ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
Now you listening ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट अदनान मौजूद है आपके अपने ज्ञानस्थली वाले स्टूडियो में। और चूंकि प्रोग्राम चल रहा है ज्ञानस्थली लाइव, तो हर रोज ज्ञानस्थली लाइव में ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट से कोई ना कोई प्रवक्ता, कोई ना कोई टीचर हमारे बीच अपने सब्जेक्ट को लेकर मौजूद होते हैं। तो आज समाजशास्त्र विभाग से समाजशास्त्र की प्रवक्ता अनु उपाध्याय मैम मौजूद हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मैम आपका हम वेलकम करते हैं।
थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून अदनान, आज हमें रेडियो पे बोलने का मिला।
जी जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैम आप आई हैं, और चूँकि आज समाजशास्त्र आपका विषय है तो उस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज मैम से इनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र से जुड़े हुए सवालों पर हम बातचीत करेंगे। तो मैम सवाल जवाब का दौर स्टार्ट करते हैं, और मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो ये है कि समाजशास्त्र जो विषय है वो क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है बच्चों?
हाँ बिल्कुल, समाजशास्त्र मैं अनान बताऊं कि समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव समाज के सामाजिक संरचना का अध्ययन करना होता है। और समाज का अपना इतिहास और संस्कृति, रीति रिवाज, संस्कार, प्रतिमान व अपना मूल्य होता है जिसका निर्माण मानव समुदाय मिलजुल कर एक दूसरे के परस्पर सहयोग से करते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक समाज के कुछ आधारभूत समूह होते हैं जिसकी उस समाज के निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका होती है। इसके साथ ही समाजशास्त्र उन सभी सामाजिक संबंधों, मानव समूहों के बीच परस्पर सहयोग व संघर्ष का क्रमबद्ध अध्ययन करता है।
ओके मैम, तो ये आपने, चूंकि मेरा सवाल पहला था कि समाजशास्त्र विषय में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को और क्या क्या उसमें होता है, तो आपने बताया है समाजशास्त्र में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। इसके बाद अब मेरा अगला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि चूंकि आप समाजशास्त्र में समाज के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये भी उठता है कि समाज का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांट का मानना है कि मानव का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो तीन अवस्थाओं से होकर वर्तमान स्तर तक पहुँचा है। इसको लॉ ऑफ थ्री स्टेज भी कहते हैं। ऑगस्ट कांट फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। पहला है धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, जो वर्तमान में वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को अध्ययन करते हैं।
ओके, तो ये आपने बताया हमारा क्वेश्चन का आंसर कि समाज का विकास कैसे हुआ। अच्छा, अभी मैम आपने कुछ ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, अभी नहीं हो रही हैं, या पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी अभी हो रही। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आजकल लोगों के बिज़ी होने की वजह, तो पहले सामाजिक तौर पर हम मिल बैठ के बातचीत करते थे, बाहर घर के पंचौरा लगता था, गांव नहीं शहरों में भी देखा जाता था, चबूतरे होते थे वहाँ बैठते थे, आज नहीं होता है। तो समाज में बदलाव जो होते हैं क्या वो सही होते हैं, होने ज़रूरी हैं, और अगर होते हैं तो क्या उसमें सही और गलत दोनों प्रकार के होते हैं?
बिल्कुल, बदलाव तो परिवर्तन ही, समाज जो है एक परिवर्तनशील है, जो कल था वो आज है और आज नहीं रहेगा, और आने वाला समय में भी परिवर्तन आपको दिखेगा, और समाज में कई तरीके का जो चेंज है आपको दिखाई देगा। इस समय जो प्रेजेंट समय में सोसाइटी में आपको, आप हर समय हर तरह हर फील्ड में आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं आगे।
ओके, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे परिवर्तन समाज में दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि हम बता दें कि समाज में परिवर्तन होता है, ज़रूर होता है, कुछ परिवर्तन अच्छा होता है और कुछ शायद हमारे लिए बेहतर नहीं होता है, जिसको हम बखूबी समझते हैं। जैसे आज लोगों के बीच में जो जुड़ाव है वो काफ़ी कम हो चुका है, और हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा आ गए, लेकिन लाइवली यानी सामने से मिलने में शायद कम इंटरेस्टेड हैं या कम वक्त देते हैं। उन वैल्यूज़ को समझना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, और जितना समझा जाएगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि समाज में जो समस्याएं हैं या कुरीतियां हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है?
बिल्कुल बिल्कुल, हम समाज में जो कुरीतियाँ हैं, व्याप्त कुरीतियाँ, जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अपराध, कई सामाजिक समस्या है जो सोसाइटी में विद्यमान है। आज़ादी के समय या उसके बाद के लंबे समय तक इससे लड़ने के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु देखा यह गया कि जो समाज अपने आप को विकसित मानता है उसी समाज में ये समस्या ज़्यादा थी। इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से सक्षम होने या शैक्षणिक रूप से समृद्ध होना ही समस्त समस्या का निवारण नहीं है। यहीं पर समाजशास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन का सीधा महत्व आ जाता है, जो शिक्षा प्रणाली में सुधार के उपाय बताता है, कानून का निर्माण कैसा हो इसका भी उपाय बताता है, समाज के अंदर लोगों में जागरूकता कैसे फैले है इसका उपाय ढूंढ कर निकालता है।
ओके, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताया कि समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, उसके बारे में आपकी राय थी ये। तो जैसे कि अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें कि चूँकि ऐसा भी होता है, जैसे अगर हम अपने आसपास की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर एक ऐसा नाम है जो आकांक्षित ज़िलों की सूची में आता है, तो वहाँ अभी भी और उसके बगल जस्ट श्रावस्ती एक ऐसी जगह जहाँ पर बाल विवाह के केसेस अभी भी सामने आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाल विवाह चूंकि एक कुरीति में माना जाता है?
बिल्कुल, और इसके लिए वो भी है कि किस 18 साल से कम एज के लड़कियों का शादी करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन आज भी ग्रामीण परिवेश में जैसे ही लड़कियां 9th 10th पास करती हैं तो पेरेंट्स की एक बर्डन हो जाती हैं कि अब इनको जो है मुझे शादी कर देनी है।
ओके,
एक उनका वो बन जाता है।
ओके, यानी आपने बताया कि जैसे कि एक वजह ही होती है कि बर्डन होती है, क्या और भी कुछ वजह होती हैं छोटी सी उम्र में शादी करने की बच्चियों की?
बिल्कुल, क्योंकि यदि लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाती हैं या पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल का कर लेती हैं तो उस हिसाब से जो डॉरी सिस्टम बना हुआ है दहेज प्रथा हम लोग की सोसाइटी में, तो ये भी पेरेंट्स को लगता है कि अपनी लड़की को यदि ज़्यादा शिक्षित कर देंगे तो उस हिसाब से हम उसका मैरिज करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, शादी में प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से वो जल्दी चाहते हैं कि लड़कियों को, मतलब और भी समाज में बहुत कुरीतियाँ भी हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से मतलब लड़की का शादी कर दे कि अपना जो बर्डन है, क्योंकि समाज में लड़कियों को जो लड़कों को छूट मिला हुआ है वो लड़कियों को बहुत मतलब उस हिसाब से कम है।
जी, तो आपने बताया कि एक तो वजह ये होती है कि डाउरी सिस्टम जो चलता है, तो जितना उनको लगता है अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमको उस हिसाब से डाउरी देना होगा, दहेज देना पड़ेगा, उसके एक होता है स्टैंडर्ड की जहाँ बात आती है। अच्छा मैम, क्या आपको ये नहीं लगता है कि एक नहीं पढ़ाने की वजह एक ये भी होती है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जब लड़कियाँ बिटियाँ पढ़ लेती है तो वो अपने हक की बात या अपने बारे में अवेयर या अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो जाती है, और शायद वो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी वो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पसंद नहीं भी आती, ऐसा भी देखा जाता है। इस पर आपकी क्या राय है?
बिल्कुल, जो हमारे सोसाइटी का एक वो बना हुआ है सिनारियो पुरुष प्रधानता
जी,
कि महिलाओं को एक पहचान जो मिली होती है बचपन में बेटी के उसमें, फिर शादी होने के बाद पत्नी के रूप में, और जो बुढ़ापे में माँ के रूप में, उनको उसी से पहचान मिलती है, उनकी खुद की पहचान जो है वो दबी हुई हो जाती है।
जी, तो आपने कहा कि जैसे कि अक्सर देखा जाता है और देखा क्या जाता है, ऐसा होता ही है कि कहीं ना कहीं अगर लड़की छोटी है तो अपने पिता के नाम से जाना जाती है, और अगर शादी बाद अपने पति के नाम से, और उसके बाद जब और एज बढ़ती है और बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो माँ के रोल में आती है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका भी ये मानना है कि लोग फ्रंट पे शायद महिलाओं को अभी नहीं लाए हैं, और फ्रंट पे आना ज़रूरी है, महिलाओं की खुद एक पहचान होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा हमको भी लगता है। सो थैंक यू सो मच आपका आज जो आपने इतने वैल्यूएबल इस पे पॉइंट्स रखे। और उसके बाद जो मेरा अगला आपसे सवाल है वो ये है कि महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से ऐसी उपाय हैं जो करने चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया। जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है, इसके माध्यम से यदि लड़कियां शिक्षित होती हैं, महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो उनका घर परिवार समाज तथा देश की सेवा करने का अवसर उन्हें मिलेगा। वर्तमान में स्त्री शिक्षा में चाहे जितनी भी वृद्धि क्यों ना हो गई हो, फिर भी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी समाज या परिवार लड़कियों को अपनी शिक्षा को ज़्यादातर पूरी नहीं करने देता, जिससे छात्राएं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं अपने महाविद्यालय की छात्राओं के बारे में बताना चाहती हूँ, जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हैं, प्रतिभावान हैं, फिर भी स्नातक के बाद परास्नातक की पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स उनको और आगे की शिक्षा से पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ज्ञानस्थली रेडियो के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो शिक्षा का उपयोग अपने पूरे परिवार को साक्षर बनाने व उसके हित के लिए करती हैं। शिक्षा के कारण ही वह स्वयं के अधिकारों को सुरक्षित करती हैं और स्वयं को सक्षम बनाती हैं। आज की शिक्षित बेटी ही कल की कुशल गृहिणी महिला है, इसलिए अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। और मैं एक लाइन में आपको बताना चाहती हूँ, वो सारी महिलाओं और बेटियों के लिए समर्पित हैं, कि हौसले से भरती हैं ऊंची उड़ान, हौसले से भरती हैं ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। क्योंकि उनके अंदर जो हौसला होता है ना महिलाओं के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है,
काम करने का जज्बा,
बहुत
अपने फैमिली के लिए जो सर्व करती हैं, जो भी काम में लगी होती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो मैं महिला सशक्तिकरण, विमेन इनपावरमेंट की एग्जांपल तो हमारी महाविद्यालय की संस्थापिका, जो आज हम सबके बीच में नहीं है, रिस्पेक्टेड लेट डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम थी। मैम ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा वो अभूतपूर्व एवं अतुलनीय जिसको कहते हैं वो है। गोंडा जनपद की छात्राओं के लिए प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना की, जिसमें आज स्नातक परास्नातक के साथ साथ कई प्रकार के कोर्स संचालित हैं, और हमारे यहाँ से पढ़कर प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्राएं पूरे देश प्रदेश में हमारे महाविद्यालय का और गोंडा जनपद का साथ साथ में नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने में जो सिन्हा मैम का मतलब बहुत बड़ा योगदान है, उनको मतलब वेगा डिस्क्रिप्शन कहें, एक शब्द में कहना चाहें तो, और स्वर्गीय डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम की सच्ची श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से यही होगी कि हमारा महाविद्यालय का निरंतर विकास हो और हमारी छात्राएं खूब मेहनत और लगन के साथ पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। एक लाइन में मैम डॉक्टर सिन्हा मैम के लिए बताना चाहूँगी कि डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम सी वॉज लेजेंड ऑफ गोंडा।
क्या बात है, आपने डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम के लिए बोला कि वो लेजेंड थी गोंडा की, और इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर पहला महिला महाविद्यालय खुला है तो वो उनका प्रयास था, और आज इतने बड़े रूप में आ चुका है, एक इतना बड़ा नाम, और हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके रेडियो स्टेशन और इतने सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज जिसको लोग बड़े शहरों में जाके करते थे, जैसे रेडियो जॉकी का है, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग सोचा करते थे या पैसा खर्च करते हैं अलग से, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में चल रही
हैं। और मैं आपको एक भी बताना चाहती हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आई है, तो उस नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग कई सारे वोकेशनल कोर्स भी है, उनके कोर्स वर्क में ही हैं जो हमारे महाविद्यालय में संचालित होती है, और अदर कॉलेज में ये नहीं है, ये हमारे महाविद्यालय में ही है, जिसमें ब्यूटिशियन है, पेंटिंग एंड डाई एंड कलर है, और कंप्यूटर कोर्सेज है। आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा रेडियो जॉकी हो गया, जिसमें लड़कियां अपनी बात को रख सकती हैं और इसमें भी अपना करियर बना सकती हैं। तो कई ऑप्शन है कि मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री और पीजी के साथ साथ कई सारे वो अपना कोर्स भी कर सकती हैं, कि वो मल्टी टैलेंट्स जिसको कह सकते हैं आप।
जी
बिल्कुल।
तो जैसे अभी आपने विमेन सेंट्रिक होके सब बातें बताई हैं, तो जैसे एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी जो महिला होती है वो एक नहीं दो परिवार का भला करती है, इससे क्या आशय आपको लगता है?
बिल्कुल, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक क्या उनको पूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादातर वो करना होता है, हर डिसीजन में, चाहे वो मतलब एजुकेशन के मामले में हो, परिवार समाज के बारे में हो, हर चीज़ में महिलाओं का ही सबसे बड़ा रोल होता है, डिसीजन मेकर कह सकते हैं उनको,
महिलाओं का रोल होता है डिसीजन मेकर होती है।
बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं कि बखूबी अपने जो कर्तव्य होते हैं, जो जिम्मेदारी होती है, उसको बखूबी निभाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम जो पुरुष होते हैं उनको उतना सम्मान, उतने रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जितने कि वो हकदार हमेशा से रही हैं, क्योंकि एक अपोजिट जेंडर यानी एक पूरी पूरी आधी दुनिया, एक पूरा आधा देश, एक पूरा आधा समाज, तो अगर हम आधे को वंचित करेंगे तो फिर आधा डेवलप कैसे करेगा, ये
बिल्कुल बिल्कुल
सोचनीय विषय है।
बिल्कुल, क्योंकि समाज में हमारी इकाई है परिवार, समाज की एक इकाई है, परिवार से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। अगर परिवार के सभी सदस्य खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, समाज भी खुशहाल होगा। परिवार सुख और शांति के लिए परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी स्नेह, विश्वास और सम्मान मतलब बहुत बड़ा आवश्यक होता है। उसमें रोल महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा होता है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार को जोड़ना, रिश्तों को निभाना, इसमें रोल जो होता है महिलाओं का
बिल्कुल
बहुत बड़ा होता है और बहुत अहम होता है। अच्छा, तो ये रही मैम बात महिलाओं के बारे में। अब हम जो आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं वो ये है कि छात्र छात्राओं दोनों के लिए आप कुछ ऐसे उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए कोई टिप्स या कोई सजेशन देना चाहेंगी?
बिल्कुल, मैं छात्राओं को बताना चाहूँगी कि एक लक्ष्य बनाएं और उस पर अटल रहें, फेल होने से ना डरें और अपने गोल को ना बदलें, खुद पर विश्वास रखें और उसे बनाए रखें, मेहनत करने के लिए तैयार रहें, खुद को बार बार मोटिवेट करते रहें, कुछ नया सीखते रहें और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, ज़्यादा ना सोचें, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचें, सफल होने के लिए एक अटूट संकल्प लें तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी।
तो जैसा कि मैम ने बताया कि भाई बच्चों को हताश निराश नहीं होना, अपने गोल पे डटे रहना है,
क्योंकि इस समय बच्चों में डाइवर्सन का जो वो है प्रॉब्लम, क्योंकि कई सारे वो चाहते हैं ना कि कम समय में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को चाहते हैं कि प्राप्त कर लें, लेकिन नहीं, आप समय के साथ अपने धैर्य को बनाए रहें।
हाँ, मुझे
फिर
भी
आपको
ऐसा,
सफलता जरूर मिलेगी।
जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे हर चीज़ बहुत इंस्टेंट चाहिए होती है, और ये शायद चीज़ें हमें बीच में जो हमारे बिहेवियर में आई उसकी वजह मुझे लगती है टेक्नोलॉजीज है।
बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया भी कह सकते हैं जो मोबाइल है, और ये सारी चीज़ों की वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब वो रहते हैं कि कुछ कम समय के लिए चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर ले, और कुछ अच्छा करने में ही तो होती है ना कि कम में ही ज़्यादा दिक्कत होती है।
बिल्कुल, तो मैम का भी ऐसे ही कुछ कहना है कि सोशल मीडिया की दुनिया जो है वो महज एक धोखा है, और आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है। तो बिल्कुल आप आगे बिल्कुल बढ़ेंगे अगर बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और बिना ना उम्मीद हुए, यानी बीच में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप उसमें अपनी नाउम्मीदी नहीं शो करेंगे तो नो डाउट आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और इस सफलता सूत्र के साथ हम मैम से एक बार फिर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप स्टूडियो में आई और आपने समाजशास्त्र विषय के बारे में बताया, साथ ही साथ आपसे सामाजिक मुद्दों पर भी बात हुई, कुरीतियाँ क्या है और उसका उपाय क्या है, इस पर आपने बखूबी इसका आंसर किया, और जाने से पहले आपने छात्र छात्राओं के लिए सफलता का सूत्र बताया। थैंक यू सो मच। और ये थी अनु उपाध्याय मैम, समाजशास्त्र की प्रवक्ता।
थैंक यू सो मच अदनान, थैंक यू सो मच, और थैंक्स अलॉट। और ज्ञानस्थली 89.0 रेडियो सुनते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।
बिल्कुल, तो बिल्कुल मैम, जैसे आप लोग आते हैं ना कुछ बड़ा अच्छी सी नॉलेज दे के जाते हैं अपने सब्जेक्ट की।
बिल्कुल, फिर आएंगे।
बिल्कुल, आप आइए और आपका मोस्ट वेलकम अगेन भी है। और साथ ही साथ अपने ज्ञानस्थली लिसनर से कहेंगे कि आप ज़रूर ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम को सुना करें, इसमें हर रोज़ ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट के कोई ना कोई प्रोफेसर्स टीचर्स आकर अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपको भी इजी हो जाएगा अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने समझने वाले हैं या आपके घर में कोई है। तो थैंक यू सो मच। नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, शो चल रहा है ज्ञानस्थली।